नमस्कार भारत, आज है 19 जुलाई दिन शुक्रवार। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। कर्नाटक में राज्यपाल ने दिया आज 1:30 बजे तक विश्वास मत पर वोटिंग कराने का आदेश। बिहार में बाढ़ राहत शिविरों में लोगों की चिंता, वापस गए तो कहां ढूंढेंगे बसेरा।
घर टूट गया, घर चला है, फुस घर टूट गया।
इस बार तो बस्ती नष्ट हो गया पूरा, क्या तो घर बह गया है।
अमेरिका में ट्रंप की रैली में महिला सांसदों के खिलाफ लगे नारे पर हुआ विवाद।
Omar has a history of launching vicious anti-Semitic screed.
और छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अंडे बांटने की योजना पर छिड़ी बहस।
विद्या का मंदिर में है, मांसाहार की भोजन तो नहीं होना चाहिए, और यदि प्रोटीन युक्त ऐसा इसको बता रहे हैं अंडा को, तो उसके बदले में काजू खिलाएं, बादाम खिलाएं, किशमिश खिलाएं।
मगर पहले BBC समाचार।
BBC समाचार कमलेश मठेनी से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि खाड़ी में एक अमरीकी युद्धपोत ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि वो ड्रोन होर्मुज की खाड़ी में अमरीकी युद्धपोत USS बॉक्सर के बहुत नज़दीक आ गया था, जिससे वहां मौजूद चालक दल को खतरा हो सकता था। वहीं ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने कहा कि उन्हें ड्रोन गिराने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते से अमरीका के बाहर आने और ईरान पर लगे प्रतिबंधों के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। अमरीकी राष्ट्रपति ने इसे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरान की एक उकसाने वाली कार्रवाई बताया है।
The Boxer took defensive action against an Iranian drone.
अमरीकी युद्धपोत बॉक्सर ने ईरान के ड्रोन के खिलाफ बचाव में कार्रवाई की, जो उसके बहुत नज़दीक आ गया था। ड्रोन ने कई चेतावनियों को नज़रअंदाज किया। अमरीका अपने कर्मियों, सामान और हितों की रक्षा करने का अधिकार रखता है। साथ ही सभी देशों से अपील करता है कि वो नेविगेशन और वैश्विक कारोबार की स्वतंत्रता में रुकावट डालने की ईरान की कोशिशों की निंदा करें। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी आज विधानसभा में विश्वास मत साबित करेंगे। गुरुवार को विश्वास मत पर 7.5 घंटे चर्चा हुई और फिर हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। वहीं कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई पटेल ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे तक विश्वास मत पर वोटिंग कराएं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक रैली में डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान ओमर के विरोध में लगाए गए नारों से खुद को अलग कर लिया है। उनकी रैली में इल्हान ओमर के लिए सेंड हर बैक के नारे लगाए गए थे। इन नारों को लेकर ट्रंप से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वो इन नारों से ना तो खुश हैं और ना ही सहमत। हालांकि इस घटना को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना हो रही है। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। दक्षिण अफ्रीका में केपटाउन शहर के कुछ उपनगरों में आपराधिक गिरोहों की बढ़ती हिंसा से निपटने के लिए सेना को भेजा गया है। सेना इन इलाकों में 3 महीनों तक रहकर पुलिस की मदद करेगी। इस फैसले को लेकर राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि सेना को उन समुदायों की सुरक्षा के लिए भेजा गया है जो आपराधिक गिरोहों के आतंक से परेशान थे। पिछले कुछ समय से इन इलाकों में हत्या के मामलों में तेजी आई है, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सेना की मौजूदगी को लेकर एक स्थानीय निवासी नेजी हैरिस ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ सेना को लाया गया है जो इन गिरोहों को इलाके से बाहर ले जाएंगे और हमारे लिए कुछ बेहतर माहौल बनाएंगे। ये थे केपटाउन के उपनगरीय इलाके में रहने वाले एक निवासी के शब्द। यूरोपीय संघ की नई अध्यक्ष ने कहा है कि अगर ब्रिटेन वाजिब कारण देता है तो वह ब्रेग्जिट पर बातचीत के लिए एक और मौका देने के लिए तैयार है। अध्यक्ष अर्जुला फन दे लायन ने पत्रकारों से कहा कि दोनों पक्षों को बिना किसी समझौते के यूरोपीय संघ से बाहर आने के नकारात्मक नतीजों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे के कार्यकाल में जिस ब्रेग्जिट समझौते पर बातचीत की जा रही थी, उसे ही आगे भी आधार बनाया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ईश निंदा के खिलाफ बने कानूनों को खत्म करने की अमरीका की अपील के साथ जुड़ गया है। कई इस्लामिक देशों में ईश निंदा एक अपराध है। संयुक्त अरब अमीरात के अलावा 2 अन्य मुस्लिम बहुल देश अल्बानिया और कोसोवो ने भी इस अपील पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें ईश निंदा से जुड़े कानूनों को खत्म करने और इसके लिए जेल में बंद लोगों को रिहा करने के लिए कहा गया है। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर लाइव। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। कर्नाटक की राजनीति में जारी भूचाल के बीच राज्यपाल ने स्पीकर को निर्देश दिया है कि वो आज 1:30 बजे तक विश्वास मत पर मतदान करवाएं। प्रस्ताव पर तीखी बहस कल ही शुरू हो गई थी, मगर स्पीकर ने बिना वोटिंग कराए ही बैठक स्थगित कर दी। इसके विरोध में बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा में रात को ही बिस्तर लगा दिया। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जो आदेश दिया था उस पर सवाल उठ रहे हैं। अदालत ने कहा था कि सत्ताधारी कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के जिन 15 विधायकों ने बगावत कर दी है उन्हें जबरन विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए नहीं कहा जा सकता। मगर पूछा जा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट विधायिका के काम में दखल दे सकता है, यानी कुल मिलाकर कर्नाटक में विधायिका की गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट दोनों के साथ टकराव की स्थिति बन गई है। कर्नाटक के ताजा घटनाक्रम पर बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
1994 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया था जिसके बाद एक सरकार का बहुमत किसी राजभवन के कॉम्पाउंड में नहीं साबित हो सकता है। वो मामला था कर्नाटका के तत्कालीन मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई का, जो बहुमत खो बैठे क्योंकि एक विधायक एक चिट्ठी में 17 विधायकों का नाम लिखकर राजभवन में देकर निकल आया। अभी कर्नाटका में भी उसी तरह का ऐतिहासिक निर्णय लेने का मौका आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय की वजह से। वो निर्णय 15 भागी विधायकों का है जिन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के खिलाफ याचिका दर्ज कर दी कि वो उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कानूनी हलकों में ये बात फैली है कि उच्चतम न्यायालय अपनी सीमा पार कर विधानसभा के मामले में दखल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने बीबीसी को बताया, संविधान इस मामले में बहुत सावधान है। विधानसभा और संसद एक तरफ और न्यायतंत्र अलग अलग ग्रह में हैं। सामान्य तौर से वो एक दूसरे में दखल नहीं देते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि 3 जजों की पीठ ने 1994 के 5 जजों की पीठ के निर्णय का पालन नहीं किया कि ऐसे मामलों में अंतरिम फैसले नहीं सुनाए जा सकते। उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि यह संदेहास्पद विषय है जिसपे कर्नाटका के विधानसभा के स्पीकर जो भी निर्णय लें उसका संवैधानिक असर पड़ेगा ही। ये थे संजय हेगड़े के शब्द। लेकिन दूसरी ओर हर किसी अच्छे वकील की तरह कर्नाटका के पूर्व एडवोकेट जनरल और वरिष्ठ वकील बीवी आचार्य सुप्रीम कोर्ट पर प्रतिक्रिया को हास्यास्पद समझते हैं। उनका मानना है कि जब विधायक इस्तीफा देते हैं तो उन्हें पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती है। बीवी आचार्य ने कहा, इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस्तीफा देना विधायकों का हक है और वो इस्तीफा देते हैं तो उनको किसी भी तरह का व्हिप नहीं दिया जा सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि जब कभी न्यायालय अंतरिम निर्णय देती है तब किसी न किसी का हक प्रभावित हो जाता है। कोई MLA किसी राजनीतिक पक्ष का बंधुआ मजदूर नहीं होता है। ये थे बीबी आचार्य के शब्द। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और धारवाड़ विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हरीश रामस्वामी अलग नजरों से देखते हैं। उन्होंने कहा, ये कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय का फैसला संतुलित है। एक तरह का मुकाबला चल रहा है जिसमें बीजेपी कांग्रेस को खत्म करना चाह रही है और दूसरी तरफ JDS और कांग्रेस अपने कौशल से बीजेपी को प्रतियोगिता दे रही है। बैलेंस करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने ना ही सांप को मारा ना ही लकड़ी टूटी। ये थे प्रोफेसर हरीश रामस्वामी के शब्द। दरअसल इस मामले ने कर्नाटका को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां विधानसभा राज्यपाल के आदेश को भी नजरअंदाज कर सकता है। राज्यपाल वाजुभाई वाला ने आदेश दिया है कि मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी को आज 1:30 बजे तक विश्वास मत पर वोटिंग करवा देना चाहिए। लेकिन कानून के जानकार का मानना है कि जब विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा शुरू ही हो गई है तो इस तरह के आदेश में कुछ ज्यादती दिखाई दे रही है। तो सवाल ये उठा है कि क्या आज कर्नाटका ऐतिहासिक निर्णय लेगा। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
और अब चर्चा बिहार में आए बाढ़ की, जहां हालात ऐसे हो गए हैं कि बाढ़ से मारे गए लोगों के शवों के अंतिम संस्कार तक की जगह नहीं मिल रही। लोग जहां रह रहे हैं वहीं शवों की भी अंत्येष्टि कर रहे हैं। हालांकि पिछले दो दिनों से बारिश रुकी है, इसलिए नदियों का जलस्तर कम हो रहा है, मगर राहत शिविरों में रह रहे लोगों को चिंता अब इस बात की है कि जब वो अपने घरों में जाएंगे तो भी वहां क्या करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो बह गया है। मधुबनी के बाढ़ प्रभावित इलाकों से बीबीसी संवाददाता नीरज प्रियदर्शी की रिपोर्ट।
नदी के धारों की आवाज उस वक्त की है जब कोसी का पानी नेपाल से बिहार में प्रवेश कर रहा था। इसी पानी ने पूरे उत्तर बिहार में बाढ़ ला दिया है। 13 जिले इसकी चपेट में हैं। करीब 47 लाख की आबादी प्रभावित है और 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ले रखा है। तटबंधों और सुरक्षा बांधों के टूटने के बाद स्थिति भयावह बनी। जिन इलाकों में आज तक बाढ़ नहीं आया था वहाँ भी दूर दूर तक केवल पानी ही पानी दिख रहा है। कई गांवों के लोग नेशनल हाईवे पर टिक गए हैं। कईयों के लिए सड़क ही अब घर आंगन सब हैं, क्योंकि गांव में सब कुछ बह चुका है। हमने लोगों से बात की और पूछा कि बाढ़ में उन्होंने क्या खो दिया है। झंझारपुर के बिदेसर स्थान की रहने वाली चुनर देवी कहती हैं,
घर टूट गया, घर चला है फूस, घर टूट गया। अखन हमरा के जुटा दे तो ओहने फोन तन करे या कुछ होने तब के जुटोते कते से जुटेबे। हां बच्चा के तबीयत खराब, अपने तबीयत खराब।
आपकी तबीयत हुई गांव में?
अपने तबियत खराब, पानी में जो हेल लिए ना सब बड तबियत खराब है।
कितनी बार पानी में आई गई होंगी?
2-3 दिन भरे हेलते रह गए अकेले, क्यों ने सहायता, क्यों ने संगे।
बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रशासन और सरकार की ओर से क्या सुविधाएं मिली हैं? हाईवे पर तंबू बनाकर अपने मवेशी के साथ बैठे गणेश यादव कहते हैं,
प्रशासन की तरफ से मदद किया है, जो भास गया था उसको लाया गया है, पन्नी मिला है हम लोग को टांगने के लिए, वो टांग दिए हैं उसमें बैठे।
सिर्फ पन्नी मिला है?
सिर्फ पन्नी मिला है, और आदमी सब आता है और देता है खाने पीने को, वही खा के रहते हैं और क्या करें।
बिदेसर स्थान के ही सुंदर यादव कहते हैं कि पानी तो हर साल आता है मगर ऐसे कभी नहीं आया।
इस बार तो बस्ती नष्ट हो गया, यहाँ से हटिया गाछी से लेकर यहाँ तक सब हमरे बस्ती का है। थोड़ा है मंडिल पर, थोड़ा लोहना रोड स्टेशन पर, जो जहाँ जो है उधर चला गया है पूरा, क्या थे तो घरे बह गया है।
हालांकि पिछले 2 दिनों से कोसी, कमला, बागमती, गंडक और अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन अभी भी सैकड़ों गांव जलमग्न हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। हाईवे पर जमा लोगों के लिए कैंप कर रहे झंझारपुर के एसडीओ अंशुल अग्रवाल कहते हैं,
देखिए जैसा कि आप लोग जान रहे हैं ये एक तरीके से फ्लैश फ्लड थे, अप्रत्याशित बाढ़ थी, तो उसके चलते झंझारपुर की लगभग 8 पंचायतों से सभी लोग विस्थापित होकर NH पे आ गए। इन विस्थापित हुए लोगों के लिए प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया गया है, सभी के लिए खाने के भोजन और इसके अलावा चिकित्सा शिविर यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है लोगों को। NH पे इन लोगों के रहने के लिए पॉलिथीन शीट्स भी सभी लोगों को दिया गया है, आप देख भी सकते हैं लोग। और जैसे कि अब पानी का जल स्तर थोड़ा कम हो रहा है तो गाँव से जो अन्य लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए एक अतिरिक्त रसोई की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा यहाँ पे की जा रही है।
बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के अपडेट के मुताबिक अभी तक 67 लोग बाढ़ से मरे हैं, मगर पीड़ितों का कहना है कि कितने लोग मरे और क्या क्या बर्बाद हुआ इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि एक सैलाब आया था जो अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। नीरज प्रियदर्शी, BBC मधुबनी।
चर्चा पश्चिम बंगाल की, जहां लोकसभा चुनाव में बहुत सी राजनीतिक पार्टियों ने सितारों को उम्मीदवार बनाया था और वे जीत कर लोकसभा में भी पहुंचे, मगर चुनाव खत्म हुए काफी समय बीत चुका है लेकिन पश्चिम बंगाल में कलाकारों के राजनीतिक पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला जारी है। कल गुरुवार को दिल्ली में बंगाल के 12 अभिनेता अभिनेत्रियों को BJP में शामिल किया गया। BBC संवाददाता आदर्श राठौर ने इस बारे में बात की कोलकाता में वरिष्ठ पत्रकार PM तिवारी से और पूछा कि आखिर क्या वजह है कि वहां नेताओं और सितारों का आना जाना लगा ही हुआ है।
लोकसभा चुनाव के बाद से ही जो दल बदल का सिलसिला चल रहा है, तो इसी के तहत कल भी बांग्ला धारावाहिकों के 13 अभिनेता अभिनेत्रियों ने BJP का दामन थाम लिया दिल्ली में। और दिल्ली में क्यों थामा, तो प्रदेश BJP अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना था कि बंगाल में इन दिनों BJP का दामन थामना काफी खतरनाक हो गया है, क्योंकि वहां धमकियां दी जा रही है और हमले हो रहे हैं, यही वजह है कि हम दिल्ली में लोगों को शामिल करवा रहे हैं। और इससे पहले भी कई पार्षद और विधायक शामिल हो चुके हैं। अभी मुकुल राय जो BJP के नेता हैं, उन्होंने भी दावा किया था 3 दिन पहले कि तमाम दलों के 107 विधायक BJP के संपर्क में हैं और वे कभी भी शामिल हो सकते हैं।
जी, तो क्या इस तरह से जैसे कि बीजेपी में बहुत सारे नेता आ रहे हैं, तो कुछ ऐसी भी खबरें थी कि तृणमूल कांग्रेस में भी बहुत सारे बीजेपी से कुछ लोग गए हैं?
हाँ, वैसे ही लोग गए हैं जो पहले तृणमूल में थे, फिर बीजेपी में चले गए थे, और इसकी वजह से कई नगर पालिकाओं पर बीजेपी का कब्जा हो गया था चुनाव लड़े बिना ही, खासकर उत्तर बंगाल में, फिर दार्जिलिंग में। लेकिन उनमें से ही कई लोग बीते सप्ताह के दौरान वापस लौटे हैं तृणमूल कांग्रेस में, जिसे तृणमूल के लोग घर वापसी बता रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इन लोगों को धमकियां देकर और वापस बीजेपी से तृणमूल में जाने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले तृणमूल वाले भी यही दावा कर चुके हैं कि बीजेपी वाले जबरन और बंदूक की नोक पर दबदबा करा रहे हैं पार्षदों और विधायकों और दूसरे नेताओं से।
जी, ये दोनों पार्टियां जो कि बिल्कुल मुकाबले में हैं और लोकसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिला, लेकिन ये तो काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। लेफ्ट कहाँ है इस बीच में? क्या वहां भी नए लोगों को जोड़ने का सिलसिला, कोई अभियान चलाने का, फिर से अपने खोए हुए जनाधार को इकट्ठा करने की कोशिशें हो रही हैं?
नहीं, लेफ्ट फिलहाल चुप्पी साधे बैठा है। हालांकि इसमें एक नई बात हुई है कि तृणमूल कांग्रेस ने 2011 में सत्ता में आने के बाद लेफ्ट के तमाम दफ्तरों पर कब्जे कर लिए थे, तो अब बीरभूम और कई दूसरे जिलों में वो उन दफ्तरों को वापस लौटा रहा है ताकि बीजेपी की बढ़त पर अंकुश लगाया जा सके। ये एक नई डेवलपमेंट है, और लेफ्ट इस मामले में कहीं नहीं है, वो चुप्पी साध रहा है और कई जगह वो कहीं कांग्रेस की मदद कर रहा है, कहीं तृणमूल की मदद कर रहा है निचले स्तर पर अनौपचारिक तौर पर। तो लेफ्ट में नेतृत्व का अभाव है और कुछ कर नहीं पा रहे लेफ्ट के लोग।
कोलकाता से ये थे वरिष्ठ पत्रकार पीएम तिवारी।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ समय से विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी की 4 महिला सांसदों से उलझ गए हैं। आप्रवासी पृष्ठभूमि से आने वाली इन सांसदों ने ट्रंप की आप्रवासन नीतियों पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद ट्रंप ने उनसे कह डाला कि उन्हें अगर इतनी ही तकलीफ है तो अमरीका छोड़ वहीं चली जाएं जहाँ से वो आई हैं। अब नई घटना ये हुई है कि ट्रंप की एक रैली में उनके समर्थक एक महिला सांसद के खिलाफ नारे लगाने लगे कि उन्हें बाहर कर दिया जाए। मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद ट्रंप को कहना पड़ा है कि उनका इन नारों से कोई लेना देना नहीं है। क्या है पूरा मामला, सुनिए कमलेश मथेनी से।
इल्हान उमर, राशिदा तालिब, अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोर्तेज और आयाना प्रेस्ले, ये 4 महिलाएं पिछले साल नवंबर में अमेरिका में सांसद चुनी गईं और सबने अपनी जीत से एक नया इतिहास बनाया। ये सभी अमरीकी मगर अप्रवासी अमरीकी हैं और चारों ही अश्वेत हैं। उन्होंने ट्रंप सरकार की अप्रवासी नीति की आलोचना की। नतीजा, गत रविवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए कि ये लोग अमेरिका से नफरत करते हैं और उन्हें अपराध में घिरी उन जगहों पर लौट जाना चाहिए जहां से वो आई हैं। अभी इसे लेकर बवाल मचा ही था कि बुधवार को नॉर्थ कैरोलिना राज्य में ट्रंप की एक चुनावी रैली में उनके समर्थक सेंड हर बैक के नारे लगाने लगे। उस वक्त ट्रंप सांसद इल्हान उमर पर बरस रहे थे, जो सोमालियाई मूल की अमरीकी नागरिक है।
Has a history of launching vicious anti-Semitic screeds.
इसे लेकर विवाद हुआ। कई सांसदों ने भी सवाल उठाए और व्हाइट हाउस में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने समर्थकों को रोका क्यों नहीं, तो ट्रंप ने अपने आप को अपने समर्थकों के लगाए नारों से अलग कर लिया।
I was not happy with it. I disagree with it.
मैं इससे खुश नहीं था, मगर मैंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द, मगर उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो किस बात से सहमत नहीं थे। सांसद इल्हान उमर ने कहा कि ट्रंप ने रैली में जो कुछ कहा वो फासीवादी विचारधारा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो भी कहा उसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं, हम वैसे ही अमरीकी वासी हैं जैसे दूसरे, ये हमारा देश है और हम यहीं के लोग हैं। ट्रंप मंच से अपनी फासीवादी सोच को फैला रहे हैं, अमरीकी नागरिकों से बाहर जाने को कह रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि वो उनकी नकारात्मक नीतियों का समर्थन नहीं करते। हम लोगों से कहना चाहते हैं कि अमरीका में असहमत होना ही देशभक्ति है। अमरीकी सांसद इल्हान उमर के शब्द। जानकारों का कहना है कि सेंड हर बैक के लगे नारे 2016 के चुनाव अभियान की याद दिलाते हैं। जब ट्रंप के समर्थकों ने उनकी प्रतिद्वंदी हिलेरी क्लिंटन को जेल भेजने के लिए लॉकर हब के नारे लगाने शुरू किए थे। बीबीसी के अमरीकी संवाददाता एंथनी जर्चर का कहना है कि ट्रंप एक चालाक राजनेता है जो अफसरों को भांप लेते हैं। वो ऐसी बातें कर डेमोक्रेटिक समर्थकों में फूट डालने और ऐसे लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बढ़ चढ़कर मत डालने से उन्हें चुनाव में आसानी होगी। हालांकि इसमें जोखिम भी है, अगर इससे उनके समर्थक एकजुट हो सकते हैं तो उनके विरोधियों के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। बहरहाल इस सबसे लग यही रहा है कि अमेरिका एक विभाजनकारी और गंदे चुनाव अभियान की ओर बढ़ रहा है।
महिला सांसदों से टकराते हुए राष्ट्रपति ट्रंप। और आइए अब नजर डालते हैं कि आज भारतीय अखबारों में किन प्रमुख खबरों को प्रमुखता दी गई है। दिल्ली से छपे अखबारों पर नजर दौड़ा चुकी हैं कमलेश मथिनी। कमलेश, क्या है आज अखबारों की सुर्खियों में?
आज हमारे सामने ये है, इंडियन एक्सप्रेस है, जिसमें हेग में अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले के बाद ये खबर दी है कि पाकिस्तान भारतीय नेवी के जो अधिकारी हैं कुलभूषण जाधव, उनको काउंसलर एक्सेस देने के लिए तैयार हो गया है। अदालत के फैसले के बाद भारत ने पाकिस्तान से इस संबंध में एक्सेस देने के संबंध में कहा था, जिसके बाद पाकिस्तान
जो फैसला कराया था उसके बाद भारत ने स्पष्टीकरण मांगा और पाकिस्तान ने उसको मान लिया है।
जी। इसके अलावा कई अखबारों में कर्नाटक का मसला छाया हुआ है, जिसमें तस्वीरें हैं, जो अंदर विधानसभा की तस्वीरें दी गई हैं। और हम ये टाइम्स ऑफ इंडिया देखें तो यहाँ चंद्रयान 2 से जुड़ी खबर है कि प्रक्षेपण की नई तारीख आ गई है, अब 22 जुलाई को प्रक्षेपण होगा। इससे पहले 15 जुलाई की तारीख थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण उसे रोक दिया गया था,
लगभग उसका टाल दिया गया था। जी, तो 22 को अब जाएगा चंद्रयान 2।
जी, हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने पर सबसे नीचे एक शेरनी की तस्वीर है जो असम में आई बाढ़ से जुड़ी हुई है, और वो शेरनी घर में छुपी हुई है। और अखबार लिखता है कि ये तस्वीर जो है वायरल हो गई है और असम में आई बाढ़ का एक चेहरा बन गई है ये शेरनी। हाँ, अपने घर से विस्थापित हो गई।
हाँ, ये तस्वीर कई जगहों पर है, बता रहे हैं कि वो एक घर है उसमें बेड पे आकर वो बैठी हुई है। और वन अधिकारी है जो वो कह रहे हैं कि वो शायद काफी भूखी थी, इसलिए और हर तरफ पानी था तो उससे बचने के लिए वो
उस घर में
बाढ़ से। हाँ, पता नहीं घर वालों की क्या हालत होगी उसको देखकर।
जी, और इसके अलावा एक खबर और है कि जानी मानी फूड चेन सर्वना भवन के मालिक पी राजगोपाल का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन पर एक अपने ही कर्मचारी की हत्या का मामला चल रहा था और उनको उम्र कैद की सजा दी गई थी, लेकिन उनके आत्मसमर्पण करने के बाद उनकी जेल में तबीयत खराब हो गई और निधन हो गया। जी, दैनिक जागरण में खबर है कि बसपा प्रमुख मायावती के भाई आनंद कुमार की 400 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति कानून के तहत आनंद कुमार उनकी पत्नी की संपत्ति जब्त की है। जनसत्ता में खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में मध्यस्थता प्रक्रिया की अनुमति दे दी है और उसके नतीजों पर 1 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट का कहना है कि मध्यस्थता समिति जो रिपोर्ट देगी, अदालत 2 अगस्त को फैसला लेगी कि क्या मामले में सुनवाई की जाए या नहीं, ज़रूरत है कि नहीं। अमर उजाला में खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सभी 1797 कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की है। इससे करीब 60 लाख लोगों को फायदा होगा। अखबार लिखता है कि दिल्ली के चुनाव से पहले ये एक बड़ा फैसला है। वहीं अखबार में भी लिखा है कि इसको लेकर भी केंद्र और दिल्ली में एक बहस हो गई है कि केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि ये जो पहल है ये केंद्र सरकार ने शुरू की थी और इस पर एक अध्यक्षता समिति बनी थी जिसने अपनी सिफारिश दी और उसे दिल्ली सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया। अगर दिल्ली से जवाब मिलने पर केंद्र सरकार आगे बढ़ेगी, तो इसका जो इसके क्रेडिट को लेकर भी
एक बार फिर, जो कि दिल्ली के लोग अभ्यस्त हो चुके हैं ये देखने के लिए कि केंद्र बनाम राज्य जो विवाद चलता रहता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब एक खबर छत्तीसगढ़ से, जहां सरकार ने मिड डे मील में बच्चों को अंडे खिलाने का फैसला किया है, मगर भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। मामला सड़क पर जाम और विधानसभा में हंगामे तक पहुंच गया है। रायपुर से आलोक प्रकाश पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में 44% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। राज्य में बच्चों की मृत्यु दर भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। पिछले साल दिसंबर में सत्ता में आने के बाद ही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कुपोषण के मुद्दे पर विशेषज्ञों की कमेटी बनाई और उनकी राय पर इस साल स्कूलों में मध्याह्न भोजन में बच्चों को अंडा देने का फैसला लिया। शाकाहारी बच्चों के लिए केला या सोयाबीन से बनी मिठाई का प्रावधान रखा गया है, लेकिन अभी फैसले पर अमल शुरू भी नहीं हुआ कि राज्य भर में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। राज्य की एक बड़ी आबादी कबीर पंथ को मानती है और कबीरपंथी धर्मगुरु समर्थकों के साथ सड़कों पर उतर आए। कबीरपंथी समाज के आर साहू कहते हैं,
छत्तीसगढ़ के पूरे कबीरपंथी समाज और कबीरपंथी समाज के अलावा जैन समाज है, अग्रवाल समाज है, ब्राह्मण समाज है, जो अंडा के विरोध में है, विद्या का मंदिर में है, इस प्रकार की मांसाहार की भोजन तो नहीं होना चाहिए। यदि प्रोटीन युक्त ऐसा इसको बता रहे हैं अंडा को, तो उसके बदले में तो काजू खिलाएं, बादाम खिलाएं, किशमिश खिलाएं।
लेकिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का कहना है कि आदिवासी इलाकों में प्रोटीन के बेहतर विकल्प के तौर पर अंडे की मांग की जा रही है।
कई क्षेत्रों में लोगों का कहना है कि हमको अंडा चाहिए, विशेष करके ट्राइबल एरियाज में उनका कहना है कि हमको अंडा चाहिए। तो सरकार का यही कहना है कि हम उस पे परीक्षण कर लेंगे, उनकी भावनाओं से और उनके मार्गदर्शन से हम अवगत होंगे धर्मगुरु के, और उसके बाद इसमें निर्णय लेंगे, विकल्प भी है।
हालांकि विधानसभा में लगातार सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही भाजपा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल इसे विभाजनकारी कदम बता रहे हैं
कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो शाकाहारी होते हैं और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोगों को एक साथ बैठाकर विभाजन की रेखा खींचना, कम से कम प्रारंभिक तौर से तो हमको सब में सद्भावना का और एकजुटता का वातावरण पैदा करना चाहिए।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का आरोप है कि अंडा लॉबी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है।
छत्तीसगढ़ के जो समाज की भावना है, संतों की भावना है, ऋषियों की भावना है, इन सबको समाहित करते हुए उनकी भावना को सम्मान करें और इसका किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार के जो सरकार के द्वारा कदम उठाई जा रही है वो उचित नहीं है, बल्कि जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।
लेकिन तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच लगता नहीं है कि सरकार इस कदम से पीछे हटने वाली है। राज्य के वरिष्ठ मंत्री और आदिवासी नेता कवासी लखमा का कहना है कि सरकार अपने फैसले को लेकर आगे बढ़ेगी।
जो अगर हमारा मुख्यमंत्री का सोच है, अगर कोई अंडा नहीं खाएगा उसके लिए भी पल्प रोड का व्यवस्था करेंगे, केला भी देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ के बच्चे जवान हो, अलते रहो, पुरती रहो, आगे बढ़े, ऐसा मुख्यमंत्री का सोच है। और इसको विरोध करने का काम कोई अगर कर रहा है तो लोकतंत्र है, उसको हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे।
फिलहाल अंडा छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारे में उबाल मार रहा है और विपक्ष इसे आसानी से छोड़ता नजर नहीं आ रहा है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ रेखा। सबसे पहले बात क्रिकेट की। 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और अब सभी टीमों की नजर अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर टिक गई है, जो 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेगा। टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसे सुपर 12 कहा जाएगा। मेजबान ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान ने टूर्नामेंट में सीधे क्वालिफाई किया है, जबकि कम रैंकिंग के चलते श्रीलंका और बांग्लादेश को क्वालिफाई खेलना होगा। टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। वहीं टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी। हालांकि वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने अपने अभियान का आगाज किया था। बात करें फुटबॉल की तो कतर में होने वाले 2022 फीफा विश्व कप एशियाई क्वालिफायर और AFC एशियन कप के लिए भारतीय फुटबॉल टीम को ओमान एशियाई चैंपियन कतर, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप ई में रखा गया है। ये ड्रॉ चीन में 2023 में होने वाले AFC एशियन कप के लिए भी है। ड्रॉ मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर स्थित AFC हेडक्वार्टर में बुधवार को निकाला गया। 2022 विश्व कप एशियन क्वालिफायर इस साल सितंबर में शुरू हो रहा है। और अब बात तीरंदाजी की। दीपिका ने टोक्यो ओलंपिक टेस्ट इवेंट में सिल्वर मेडल जीत लिया है। लेस्लाम बोम्बालिया देवी, अतानु दास, तरुणदीप रॉय और प्रवीण यादव अपने अपने मुकाबले हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। भारत की दीपिका कुमारी ने टोक्यो ओलंपिक टेस्ट इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है।
और सभा समाप्ति से पहले मुख्य समाचार।
BBC समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज की खाड़ी में एक अमरीकी युद्धपोत ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। ये ड्रोन अमरीकी युद्धपोत USS बॉक्सर के बहुत नजदीक आ गया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी आज विधानसभा में विश्वासमत साबित करेंगे। गुरुवार को विश्वासमत पर चर्चा के दौरान हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक रैली में डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर के विरोध में लगाए गए नारों से खुद को अलग कर लिया है। उनकी रैली में इल्हान उमर के लिए सेंड हर बैक के नारे लगाए गए थे। दक्षिण अफ्रीका में केपटाउन शहर के कुछ उपनगरों में आपराधिक गिरोहों की बढ़ती हिंसा से निपटने के लिए सेना को भेजा गया है। सेना इन इलाकों में 3 महीनों तक रहकर पुलिस की मदद करेगी। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी कमलेश मठेनी। इसी के साथ ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज तकनीकी सहयोग दिया तिलक भाटिया ने। अब अपूर्व कृष्ण को अनुमति दें। नमस्कार।